اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای میل اسپیشل میں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو کہ بہرحال آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو اہمیت دی اور پسند کیا۔ وہ آپ لوگوں کے سوالات جو آئے ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں۔ اس لیے یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ آپ کے مورد پسند اور آپ نے اس کو پسند کیا ہے، اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اسی طریقے سے آپ کی پسند کے اعتبار سے، تاکہ آپ کے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے، اس لیے ہم ایسے پروگرامس رکھتے رہیں گے۔ تو آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس میں چند سوالات ہیں جن کے ہمیں جوابات حاصل کرنے ہیں علی جناب مولانا علی عظیم شیراری صاحب سے، جو مستقل آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ لہذا آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ جو ای میل اسپیشل کا ہمارا پروگرام ہے، اس میں ناظرین کے بہرحال توقعات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اپنے جوابات کو حاصل کر لیں اس پروگرام کے ذریعے سے۔ تو یہ پہلا سوال جو ہے، یہ فیصل آباد سے ہے۔ یہ سیما خاتون اس چیز کو لکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جو آج کل کے ہمارے عام طور پر مشکلات ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد یہ لگا کہ واقعاً یہ شاید انہوں نے سوال کر دیا، لیکن اس کے جوابات سے پتہ نہیں کتنے افراد استفادہ کریں گے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ خاتون لکھتی ہیں کہ میں دو بہنوں سے چھوٹی ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میری دونوں بہنیں ابھی تک کنواری ہیں، اور اب ہم تقریباً تینوں ایک ہی جیسے لگنے لگے ہیں، اس لیے اب جو بھی آتا ہے وہ مجھے ہی پسند کرتا ہے، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں دو سے چھوٹی ہوں، اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اگر میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو ہماری دو بیٹیوں کا دل ٹوٹے گا اور ان کے لیے شاید روانی مشکل ایجاد کر دے یہ چیز۔ اب یہ بتائیے کہ کیا میں بھی اپنے آپ کو یوں ہی تکلیف دیتی رہوں، اس میں میری کیا خطا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یہ ایک معاشرے میں پائی جانے والی ایک مشکل ہے
جی،
اور اس میں بالکل یہ حقیقت بھی یہی ہے
جی
کہ اس میں ماں باپ نہ جانے کیوں اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تک بڑی کی نہ ہو تو چھوٹی کی نہیں ہو سکتی
جی۔
دین تو کم سے کم یہ فکر آپ کو نہیں دیتا
جی۔
جہاں تک بات اس احساس کی ہے تو ٹھیک ہے کہ ایک احساس بڑی بہن کے دل میں یہ ایجاد ہوتا ہے کہ چھوٹی کا رشتہ آ رہا ہے، میرا کیوں نہیں آ رہا
جی،
لیکن اس سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہ، اس کے برعکس بھی پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک چھوٹی بہن ہے اسی کے پروپوزل زیادہ آ رہے ہیں
جی،
تو یہ اور ٹینشن کا باعث بن جاتی ہے بڑی بہن کے لیے کہ اس کی وجہ سے چھوٹی بہن کی نہیں ہو رہی
جی۔
اگر بڑی بہن کو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ اس کا رشتہ آ رہا ہے، چھوٹی کا آ رہا ہے، میرا کیوں نہیں آ رہا
جی،
تو اس یہ ایک اور ٹینشن کا باعث بنتی ہے کہ میں رکاوٹ ہوں اپنی چھوٹی بہنوں کی شادی کے لیے
جی۔
اور اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ عمر گزرنی شروع ہو جاتی ہے
جی،
ٹھیک ہے، رشتے آپ کو قسمت سے ملتے ہیں، آپ کے نیک اعمال سے ملتے ہیں، آپ کے اچھے کام آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ اگر آپ کے بیٹیوں میں اگر کوئی آ کے آپ کی چھوٹی بیٹی کو پسند کرتا ہے، اگر وہ بالغ ہے، رشیدہ ہے، تو آپ کی شادی کر دیں
جی۔
دیکھیں، جب آپ شادی کریں گے تو راستے کھلیں گے
جی،
خدا رحمتوں کو نازل کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے آج کے معاشرے میں، تو یہ بالکل مشکل نہیں ہے
جی
کہ اگر آپ چھوٹی بیٹی کی پہلے کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی کے سبب، اسی کے وجہ سے خدا انشاءاللہ اور رشتے بھیج دے گا
جی،
دس لوگ اور ملیں گے، ملنے جلنے والے میں اضافہ ہوگا، دو خاندانوں کے لوگ ملیں گے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بیٹیوں کو پسند کر لے
جی۔
اگر آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ اچھی ہیں، اچھی تربیت شدہ ہیں، تو وہ کہیں گے جب چھوٹی بھی ایسی ہے تو اس سے بڑی
جی۔
تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نہ تو ہمیں سیرہ میں کہیں، سیرہ ائمہ میں کہیں یہ بات ملتی ہے، نہ دین نے آپ کو کہیں تاکید کی ہے کہ آپ کو حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہے اور پہلے کا بڑی کا پہلے کرنا ہے، بعد میں چھوٹی کا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھی بات ہے اگر بڑی کا ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر پروپوزل آ گیا ہے اور چھوٹی کا مسلسل آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کی شادی کر دیں۔
وہی مشکل یہاں پر یہ ہوتی ہے مولانا کہ بہرحال ماں باپ تھوڑا سا احساسات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے ہمارے دوسرے بچوں پر اس کا اثر پڑے۔
اس کا دونوں اثر پڑ رہا ہے نا، اس کا منفی اثر بھی تو پڑ رہا ہے کہ چھوٹی کے ذہن، بڑی کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے نا کہ کل کو چھوٹی سے سوچے گی میری شادی ہو جاتی
جی،
میں اپنی بڑی بہنوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہی ہوں
جی۔ ہاں، چھوٹے کو یہاں سے تصور آنا ہی ہو، جیسے انہوں نے تحریر بھی کیا اس چیز کو کہ بہرحال کی اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری ہو جاتی، ہم جو ہے سامنے رکاوٹیں ہمارے،
گھر میں ٹینشن بڑھے گی نا، نفسیاتی پریشر تو دونوں پہ بلٹ ہو رہا ہے، तो हमें एक को ख़त्म करना चाहिए। जब हम एक का एक की शादी कर देंगे तो फिर ये दो रह जाएंगी ना, अब जो भी रिश्ता लेने वाला है इन दोनों में से किसी एक से लेगा।
जी जी आपने वाकई यही एक सवाल रहता है, जैसा कि काफ़ी ज़माने में बातें होती रहती हैं और लोग यही आजकल के ज़माने में, जैसा आपने कहा कि अगर छोटी लड़की का ज़्यादा रिश्ता आ रहा है तो इसको निपटा देता हूँ, ताकि अब जो आएगा इसको पसंद ही ना करेगा, जो शादी हो
हो
चुकी है, अब
चुकी
जो
है
हो चुकी है, जो बच्ची हैं उन्हीं के लोग जो है
उन्हीं के लोग
कबूल
करेंगे,
करेंगे, पसंद करेंगे
और
उनको।
ऐसा ही होता है। और खुदा आपके मसाइल को हल करता है,
जी
जब
हाँ
आप
खुदा
एक मसले को हल करते हैं, एक अच्छा काम कदम उठाते हैं तो रास्ते खुलते हैं।
जी
इसमें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है, कर देना
जी
चाहिए।
यानी वही कि बहरहाल शादियां कर देनी चाहिए, और ज़्यादा जो इंसान लेट भी हो जाता है शादी में, कभी कभी ये मुश्किल मौलाना होती है कि इंसान बग़ैर इसके कि वो अल्लाह पर तवक्कुल रखे, ऐसे अक्सर केसेस
जी
होते हैं कि रिश्ता आ रहा है, नहीं वो हमारे लायक नहीं है, हमारी बेटी इस माहौल में पली है, वो कभी, चूंकि औलाद के अंदर किसी को अपने कोई कमी नहीं दिखती
नहीं
है,
दिखती है, सही
वो
है।
सामने के अंदर कमियाँ ढूंढता है, जिसकी वजह से उम्र गुजरती जाती है। और एक शेर याद आ गया यहाँ पर कि ज़िंदगी के काफ़िले कहने से ये रुकते नहीं, हम भी चलते हैं, ठहर जाओ ज़रा आराम लो,
आराम हो
तो ज़िंदगियाँ यूं ही बढ़ती चली जाती हैं, बस
जी,
हमें ये महसूस करना चाहिए कि उस ज़िंदगी गुजर जाने से पहले हम कुछ कर सकें।
बिल्कुल
जी तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए, और हमें उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने मोहतरम, खुसूसन जिन्होंने ये सवालात भेजे हैं, वो इनसे ज़रूर इंशाल्लाह कस्बे फैस करेंगे। तो ये दूसरा सवाल है सखर से, खातून जहरा का, वो लिखती हैं कि शादी से मुझे एक अजीब सी तवक्को थी कि बहरहाल दुनिया में जो मैंने अपने माँ बाप को जिस एतबार से देखा कि बहरहाल उनकी ज़िंदगी कैसी थी, हमारे वालिद साहब बहुत वक्त देते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद कुछ हालात अलग हो गए। या तो मेरे शौहर जब घर में आते हैं तो उनके आने के बाद फ़ौरन कोई दोस्त आ जाता है, दोस्त अहबाब के साथ बैठे रहते हैं, और रात का एक वो वक्त गुजर जाता है कि जब वो घर मेरे पास आते हैं तो हम सो चुके होते हैं और हमें बात करने का मौका नहीं मिलता, या वो अपने भाई बहनों के साथ बैठे रहते हैं। अब आप ये बताइए ऐसा घर में रहना किस फायदे का है, मैं आपसे ये हल चाहती हूँ कि कोई ऐसा हल दीजिए और मेरे शौहर को ये नसीहत करें कि वो घर में रहें और मुझे वक्त भी दें।
जी। पहली बात तो ये है कि इनकी तवक्कुआत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजर रही।
जी
पहली बात जो उन्होंने तवक्कुआत की है तो वो यही है कि तवक्कुआत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजर रही, एक। दूसरी बात ये है कि वो घर में होते लेकिन इनको टाइम नहीं देते,
जी
वो अपने दोस्तों को या अपने
भाई बहनों
भाई
को
बहनों को टाइम देते हैं। तो यहाँ इनकी बातों से जो बात सामने आ रही है ना, वो दो बड़े इश्यूज़ हैं। जब शादी होती है इंसान की और वो ज़िंदगी स्टार्ट करता है तो वो चाहता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ,
जी
ख़ासतौर से ख़वातीन
जी
के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो वक्त अपने शौहर के साथ गुजारें, और मोहब्बत चाहत यहीं से डेवलप होती है कि दोनों एक दूसरे को ज़्यादा ज़्यादा टाइम दें और क्वालिटी टाइम दें, ये इंपॉर्टेंट होता है। नहीं कि आप सबको भुला दें, दूसरों को भी दें लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को भी प्रॉपर टाइम दें,
जी
जो कि वो यहाँ नज़र आ रहा है कि वो नहीं दे रहे। इसकी एक वजह जो होती है वो ये होती है कि आपका कल्चर जो होता है ना, जिसमें आप रूटीन लाइफ के आदी होते
जी
हैं,
जी
आप उससे नहीं निकल पा रहे होते। यानी शौहर का कल्चर ये है, जिस घर में ये गई हैं, जिस फैमिली में ये गई हैं, वहाँ का सलीका ढंग ये है
जी
कि वहाँ महफिल जमाई जाती है, महफिल लगती है,
जी
जिसे बाज़ ज़बान में कहते हैं सकर की ज़बान का कचहरी लगती है,
जी
ठीक है ना, बैठक लगती है।
जी
तो बाज़ कल्चर्स में ऐसा होता है कि वहाँ की ख़वातीन भी इसकी आदी होती हैं, ये गालिबन उस कल्चर की नहीं है, उस ट्रेंड की नहीं है, तो वो इनको एडजस्ट नहीं कर पा रही वो उसके अंदर। क्योंकि वहाँ ये होता है कि रात में मियाँ जैसे या शख्स जो भी है, वो जब काम से ऑफिस से घर आता है, रोटी खाता है, और रोटी खाने के बाद फिर महफिल जमती है, उसमें फिर गप्पे बातें और पूरे दिन क्या हुआ और दिल आज़ारी भी
यानी
उसके अंदर
सारे घर के अफराद एक साथ
सारा,
बैठकर
सारे
अपनी
घर के
अपनी
अफराद
बातें।
बैठे होते हैं, या वो शख्स घर से निकल के बाहर जाता है, मर्दों की महफिल में बैठता है, तो वहाँ वो बातें होती हैं। ये मिजाज है, ये एक एक्सेप्टेड और समझा हुआ, वैल्यू दिया हुआ, ये एक प्रैक्टिस है,
जी यहाँ वहाँ का माशरा ही ऐसा
ऐसा
है।
है। अब ये जब इस माशरे में गई ना, तो ये किसी और तवक्कुआत के साथ आई थी,
जी
तो यहाँ पे इनको ये समझना पड़ेगा कि इस माशरे में कैसे रहते हैं लोग, यहाँ की ख़वातीन कैसे रहती हैं। शिकायत भी अगर करती होंगी तो वो उसमें रहती भी होंगी,
जी
ठीक है। तो अव्वल तो ये इससे इसके मुकाबले में ना आए, ये अगर मुकाबले में आएंगी तो क्लैश हो जाएगा इनके साथ,
जी
झगड़ा होगा और टेंशन बढ़ेगी,
जी हाँ जल्दी अपने आप को इंसान चेंज नहीं कर पाता, जैसा कि आप
टाइम लगता
मुसलसल इस चीज़ को बयान
है।
कर
जी
रहे
हाँ,
हैं।
टाइम लगेगा और सब्र करना पड़ेगा। तवक्कुआत भी उनको, जो उनकी तवक्कुआत थी, ठीक थी। शादी से पहले उन्होंने एक तवक्कुआत बनाई, हकीकत के कितने मुताबिक थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आई है तो उसके मुताबिक नहीं निकल रही।
जी
और ज़्यादातर ताकीद भी किसी बात पर है कि शौहर उनको टाइम दे,
जी
तो शरण ये उनका हक़ है कि शौहर उनको टाइम दे, शौहर को बीवी को टाइम देना चाहिए।
जी
अब शौहर की ये आदत नहीं है, तो कम से कम उन्हें ये आगाही दिलाई जाएगी कि आप अपनी बीवी को कुछ तो टाइम दें, बहुत थोड़ा सा टाइम उनसे लें,
जी
एकदम से नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने आप को बेहतर बनाए तो बेहतर है, यानी खातून अपने आप को उस कल्चर में ढालें तो बेहतर है,
जी
क्योंकि वो कल्चर से क्लैश ना करें, वरना वो पूरा कल्चर इनके खिलाफ़ हो जाएगा, घर वाले इनके खिलाफ़ हो जाएंगे
जी
कि ये आई हैं हमारे निज़ाम को धर्म भरम करने के लिए, हम लोग खुश थे, हमें प्यार मोहब्बत था, सब कुछ था, अभी आके हमारे बच्चे को हमसे खींच लिया है, दोस्तों से जुदा कर दिया है और अपने चार दीवारी के अंदर ले गई हैं इसे, ये तस्वीर ये लोग क्रिएट करना शुरू
जी
कर देंगे। तो ऐसे ऐसे मौक़ों में आपको सब्र करना होता है, तहमुल करना होता है, कुछ अर्सा होता है शौहर दोस्तों में बैठता है उठता है, लेकिन आपसे कहें ठीक है मुझे कोई हर्ज नहीं है, आप साल एक दिन आप मुझे दे दें खाली, या एक दिन में 2 घंटे मुझे दे दें,
जी
इस तरह से आप ग्रेजुअली लेके बढ़ते जाएं, अपने प्यार मोहब्बत में कमी ना लेकर आएँ, शिकायत ना करें और सब्र तहमुल से काम लें, तो ये
जी
आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपने शौहर को अपने साथ ज़्यादा टाइम पर भी ला सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगी नहीं पहले ही मरहले में मैं उनसे कहूँगी या तो आप मुझे टाइम दें या अपने दोस्तों को टाइम दें, इस तरह नहीं होगा, ये एक माइंडसेट बना हुआ है, एक प्रैक्टिस बनी हुई है, उसको आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते।
जी और मर्दों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ का लिहाज
मर्दों को
रखें।
चाहिए लिहाज करें, क्योंकि आप शादी किए किस लिए किए, शादी इसलिए किए ना कि घर में एक बीवी आए, उसके हुकूक भी तो अदा कर लें,
जी
हुकूक अदा करें, उसको उनको आगाह करें हुकूक से, अख्लाक से, आइम्मा के सीरे सीरे से कि उन्होंने किसने ज़िंदगी गुजारी, बीवी बच्चों को किसने टाइम दिया, ताकि वो उसको भी प्रैक्टिस करें। जब इंसान कहता है कि भाई हम एक मोमिन हैं, हम मौला ही हैं, तो भाई ठीक है मौला क्या क्या फरमान पर भी तो अमल करें ना,
जी
तो ये तकाजा होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा,
जी
दिल जीतना पड़ेगा घर
जी
वालों
हाँ,
का,
यानी हुकूक की रियायत करें एक दूसरे की। बहरहाल वो इतनी जल्दी अपने माशरे से नहीं निकल
नहीं
सकते,
निकल सकते।
और लेकिन ये चाहिए कि बहरहाल वो भी इस खातून के भी, चूंकि उस माहौल की नहीं है,
जी
लिहाजा
हाँ
उसको भी लगता है कि हमारा शौहर अपने साथ रहे। जैसे वो अपना माहौल नहीं बदल पा रहे, उसको भी टाइम
जी
लगेगा अपने
बिल्कुल,
माहौल
इनको
को।
टाइम लगेगा।
जी ये दिल्ली से बिल्किस खातून ये तहरीर फरमाती हैं कि ज़माने के जो अखराजात हैं उनको देखते हुए हम दोनों मियाँ बीवी ने यह फैसला किया कि हम दोनों जॉब करें। लेकिन उसके साथ हम दोनों अभी जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जब मैं घर आती हूँ तो हमारे शौहर की ख्वाहिश ये रहती है कि मैं सारे घर के उमूर को अंजाम दूँ। अब एक वो खातून जो दिन भर काम से अपने ऑफिस में या दूसरी जगह अपने काम में लगी हुई हो, जब वो अपने घर आए तो वो घर के सारे काम कैसे अंजाम दे सकती है।
जहाँ घर के दोनों जगह जॉब कर रहे हैं और आजकल हालात भी ऐसे हो गए हैं कि ज़रूरत, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी ज़रूरत है, तो इसमें तो ज़रूरी है कि शौहर भी उनके हाथ बटाए, क्योंकि जबकि वो इक्तसादी हवाले से शौहर का हाथ बटा रही हैं
जी
घर के उमूर को चलाने के लिए, तो ये एक ज़िम्मेदारी इनकी और बढ़ गई है, तो शौहर को भी चाहिए कि जब वो घर आएँ तो वो उनके हाथ बटाएँ, जिस हद तक बटा सकते हैं उस हद तक तो करें,
जी
और जब मिलकर ज़िंदगी गुजारनी है तो हर चीज़ शेयर करनी है
जी
तो इसमें भी वो शेयर करें, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो हम देखते हैं
जी
कि आपने घर के सारे काम किए,
जी
आपने घर में झाड़ू भी लगाया, आपने जो है वो ऊँटनी से दूध भी धोया है
जी
और आपने सारे काम किए,
जी
घर के जो उमूर होते हैं कपड़े का धोना है वो भी आपने किया,
यानी मर्द
आपने
और
अपने
औरत का तसव्वुर जो हमारे यहाँ गलत
जो
है
गलत
वो
तसव्वुर है
इस्लामी तसव्वुर से तकरीबन पूरी तरीके से मेल नहीं खाता,
नहीं
मेल नहीं
खाता,
खाता। जी
क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी यही किया,
जी
आपने हज़रत फातिमा सलाम का हाथ बटाया घर के अंदर भी घर के बाहर भी, तो ये तो एक अच्छे इंसान की पहचान है ना कि सामने
जी
वाले को वो इज्जत देता है, अहमियत देता है, उसको अपना शरीक समझता है,
जी
ठीक है कि अब वो कोई इंसान जो है वो अगर एफोर्ड कर सकता है किसी को मेट रख सकता है, कोई
जी
काम करने वाली या कोई शख्स बावर्ची रख सकता है, तो वो एक अलग बात है, एफोर्ड कर सकते हैं आप रख लें,
जी
लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते, आप ख़ुद हेल्प कर सकते हैं तो कर दें।
जी
अब जैसे ये खातून फरमा रही है कि मुझे ही सारा काम करना है, तो ठीक है अगर आप दोनों कमा रहे हैं और इतना कमा के बचा सकते हैं कि कोई काम करने वाला घर में रख लें,
जी
खातून कोई आए सफाई कर जाए, खाना पका जाए, तो ठीक है ये कर लें, लेकिन अगर ये नहीं हो सकता
जी
तो फिर मियाँ को भी हाथ बटाना चाहिए, तो फिर
जी
जुल्म हो जाएगा ना कि एक से ज़्यादा काम ले रहे हैं, एक से कम काम ले रहे
जी
हैं, तो ये तो अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी यही है।
कि अपनी ज़िंदगी के दोनों आदमी, जिस तरीके से खातून आपकी हेल्प कर रही है और आपकी मदद कर रही है आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में, तो आप एक अच्छे मर्द होकर भी
आप उसकी मदद करें,
उसकी मदद करें।
उसकी सेटिंग आप खुद कर सकते हैं कि फर्स्ट हफ्ते के 3 दिन ये कर लें, 3 दिन वो कर लें, या आधा आधा काम कर लें, या जैसे भी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो
जी
सकती
हाँ,
है,
जिस तरीके से हो
लेकिन कोई
ताकि
शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सारा काम मैं ही क्यों करूँ, बात सही है उनकी, जायज़ है शिकायत,
जी
तो यहाँ शौहर से ताकीद यही होगी कि आप भी एक अच्छे शौहर होने के नाते जो है आप उनका
उसकी
हाथ
मदद
बटाएं
करें
घर के
ताकि
काम
बहरहाल
में
ज़िंदगी हमारी अच्छी गुजरती
और
रहे।
अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे
जी
बढ़ें। जी
जी ये एक बहरहाल ये सवाल आया है पेशावर से। सुमैरा खातून लिखती हैं, कहती हैं कि मैं एक पढ़ी लिखी खातून और पीएचडी किया हुआ है मैंने, लेकिन जिस माहौल में मेरी शादी हुई है वहाँ कबायली माहौल है और अभी भी खातून को ये हक नहीं है कि वो अपनी राय पेश करे, जबकि मेरे शौहर इल्मी एतबार से मुझसे बहुत कम है। लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मैं वहाँ पर बोल नहीं सकती हूँ किसी भी मसले में, यानी घरेलू यानी घर का भी कोई मसला हो, कोई फैसला हो, तो मैं उसको अंजाम नहीं दे सकती। हर बार यही कहकर मुझे खामोश कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ औरतों को बोलने की इजाज़त नहीं है। तो क्या इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद मेरी कोई हैसियत नहीं है?
जी, हमारे माशरे का ये एक बहुत
अलमिया है।
बड़ा मसला है ये कि हम लोग इतने यानी तरक्की याफ्ता दौर में भी रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हम बाज़ उस सिस्टम्स पर बाकी हैं कि जो दौर जाहिलियत से चले आ रहे हैं और अभी तक वो राय जो नाफिज़ हैं। क्योंकि शादी से पहले हमने अपने बहुत पहले प्रोग्राम्स में जहाँ पे हमने शरीक हयात के इंतखाब की बात की थी, वहाँ पर हमने जब हम कुफ होने की बात की थी वहाँ पे ये बताया था कि आप तालीमी एतबार से ज़रूर देखें
जी
कि आप किससे शादी करने जा रहे हैं या जा रही हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो ठीक है,
जी
लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा अगर तालीमी एतबार से तो मुश्किल हो जाएगी,
जी
और ये मुश्किल आज हम यहाँ देख रहे हैं
जी
कि वाकई ये एक मुश्किल है कि एक खातून अगर PhD है, उनका शौहर बहुत कम पढ़ा हुआ है, तो फिक्री हम मांगी तो बिल्कुल भी नहीं होती,
जी
मुश्किल हो जाती है वहाँ पर। मगर ये कि तरबियत याफ्ता, अगर दोनों तरबियत याफ्ता भी होंगे तो मुश्किल बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, मुश्किल यहाँ पे एक और भी है, वो है कबायली सिस्टम है और वहाँ पे ख़ास किस्म का एक निज़ाम है, उसमें ख़वातीन को इजाज़त वाकई नहीं होती है, तब अख्तियार भी नहीं रखती हैं, बाज़ जगहों पे ऐसा भी होता है।
जी
तो ऐसी सूरत हाल में वाकई एक मुश्किल है, ये सिस्टम की मुश्किल है ना, ये तो आप इन्वायरमेंट की मुश्किल आप कह लें।
जी
मिसाल तौर पर आप एक ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ में चले गए, नॉर्थ पोल पर चले गए जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है,
जी
अब आप वहाँ हैं और बर्फ़ है तो आपको कोट तो लेना ही पड़ेगा,
जी
आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ कोट नहीं पहनना चाहती,
जी
ठीक है ना, सर्दी है उसको अपने बचाना है तो ये करना पड़ेगा। हमें इस सूरत हाल में हमें पूरे माशरे को एजुकेट करना होता है, माशरे में तालीम और तरबियत के निज़ाम को नाफिज करना होता है, उसके असरात बाद में देखे जाते हैं 10-15 साल बाद। इस सूरत हाल में जिसमें ये मौजूद है, वाकई इस माहौल में पहला मरल तो ये कि इनको सब्र करना होगा,
जी
इनको अपने अब क्योंकि ये पढ़ी लिखी हैं तो इनसे तवक्को भी है कि इनके अंदर तवाज़ो ज़्यादा आएगा,
जी
इनको अपने पढ़ाई पर तकब्बुर नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको ये समझना चाहिए कि इतने पढ़े लिखे होने का नतीजा ये होता है कि आप दूसरे को डेवलप करें, आप दूसरे को उसकी सतह फिक्री बुलंद करें,
जी
ठीक है ना, अपने अतराफ के लोगों को तालीम की तरफ दावत दें, उनको आगे लेके जाएं, और बहुत ग्रेजुअली इसको आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाएं,
जी
और जितना भी वो शऊर पैदा करेंगे उसके लिए काम करेंगे, अपने माशरे को डेवलप करने के लिए, अपनी नस्ल को पढ़ाने के लिए,
जी
ये चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। बहरहाल ये एक मुश्किल है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इससे नाउम्मीदी नहीं है,
जी
आपको टाइम लगेगा लेकिन आप डेवलप करें।
जी हाँ, मुश्किल ये होती है। बहरहाल वो घर के एक फ़र्द हैं,
जी
तो
हाँ,
कभी कभी मुश्किल ये होती है, उनके सामने कोई गलत फैसला हो रहा है,
जी
पढ़ी
हाँ,
लिखी हैं, ज़माना देखा है, मेहनत
जी
की है
हाँ,
उन्होंने, उनको लगता है ये फैसला गलत है,
जी हाँ।
लिहाजा बेचारी बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वही सवाल।
देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपसे ज़्यादा तो काबिल कोई भी नहीं था ना,
जी
और आपके साथ असहाब भी थे, लेकिन बहुत सारे फैसले आप असहाब के मशवरे से
जी
करते
हाँ,
थे,
मुतअद्दिद मौके पर फैसला
ठीक है
किया,
ना,
मशवरा किया है।
लेकिन आपको पता भी था कि ये नुकसान होने वाला है, आपने आगाह भी कर दिया था और नुकसान भी हुआ,
जी
तो आपने थोड़ी कहा कि नहीं मेरा ही फैसला माना जाएगा वरना किसी और का नहीं माना जाएगा, आप तो सब कुछ जानते थे। लेकिन आपको जब माशरे को डेवलप करना होता है तो उसके हिसाब से आगे बढ़ना होता है, तो आप अपनी बात बता दें, आप अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर दें, उसके बाद वो खुद सीखें तजुर्बे से,
जी
एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, और हमें इस तरह चलना होता है, आगे माशरे को लेके आगे बढ़ना होता है। और ये हमारा एक रोल है कि अगर हमने इल्म हासिल किया है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, हम हिदायत याफ्ता हैं, तो फिर हम दूसरे की हिदायत करें, उनको लेके आगे बढ़ें। तो ये एक सब्र और तहमुल, इसका अजर आपकी ज़िंदगी में बहुत है, दुनिया
जी
आखिरत दोनों में आपको उसका अजर मिलेगा,
जी जी
आप इससे बिल्कुल मायूस ना हो,
जी
क्योंकि ये एक बड़ा काम है कि आप एक माशरे को डेवलप करना चाह रही हैं, अपनी नस्ल को डेवलप करना चाह रही हैं, और अभी आप इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो इनको डेवलप करें, इनको एजुकेट करें, इनकी
जी
तरबियत करें, ताकि ये
उनकी
आगे
सतह
बढ़ें,
फिक्री को वो और
आहिस्ता
ऊपर
आहिस्ता
लेकर
ऊपर
आए।
लेकर
जी
आएँ, ताकि ये समझ सकें,
जी
और फिर अपना एनवायरनमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का बनाएं, पढ़े लिखे लोगों में अपने घर वालों को लेके जाएं, उनको उनको बैठाएं ताकि वो समझें इन चीज़ों
जी
को,
और बहरहाल जहाँ पे इल्म होगा वहाँ पे शऊर बढ़ता ही जाएगा, और
बढ़ता
जितना
जाएगा।
ये इल्म देती चली जाएंगी
जी,
उतना बहरहाल
और ये
शऊर जो
हाँ,
है।
ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये
जी
इतनी जल्दी एक दिन में, एक महीने में, एक साल में होने वाला प्रोसेस नहीं,
जी
इसमें टाइम
टाइम
लगेगा
लगेगा और
जी
उनको सब्र करना पड़ेगा तब
जी
तक के
सब।
लिए,
और ये
जैसा कि
इंशाल्लाह
आपने
खुदावंद करीम जो है वो
नतीजा
करीम
खैर
है,
देगा।
नतीजा खैर देगा
जी
इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं,
जी
जिंदगी
बहुत
में
बहुत
रहो।
शुक्रिया, चूंकि अब हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है लिहाजा हम अपने बाकी सवाल को यहाँ पर मतरह नहीं कर सकते, आपके सामने पेश नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो हमारे ईमेल स्पेशल का प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह बाकी सवाल हम आपकी खिदमत में
जी
पेश करेंगे और इंशाल्लाह काने कुनंदा और नफा बख्श जवाब इंशाल्लाह आपसे हासिल करेंगे।
इंशाल्लाह
तो नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे ईमेल स्पेशल का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन अगला प्रोग्राम आएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।